हम लोग छेराला की तीसरी ढाल पर डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमने बहिरात्मा का स्वरूप देखा है थोड़ा सा। जो देव और जीव को एक गिनता है वह बहिरात्मा है, वह तत्व से मुझा है। और फिर अंतरात्मा के तीन प्रकार देखे, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। बराबर। और फिर उन सबके अलग अलग भेद के उत्तम में कौन आता है, मध्यम में कौन आता है और जघन्य में कौन आता है। फिर हमने सकल निकल परमात्मा की भी चर्चा करी, उसमें से जो सिद्ध भगवान थे उनके आठों कर्मों का अभाव हो गया है और जो अरहंत भगवान है उनके चार घातिया कर्मों का अभाव हुआ, चार घातिया शेष है। तो सिद्ध भगवान संसारी नहीं थे, रहते उनके संसार अंग्या प्राप्त नहीं होती हो। अरे कोई मुझे बताएगा सिद्ध भगवान के आठ गुण जो प्रकट हुए हैं उनके नाम क्या क्या है? एनीवन? सिद्ध भगवान के आठ गुण है राइट?
हाँ जी,
हाँ जी,
बताइए नाम।
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, अगुरु
जी वेरी
लघुत्व,
गुड।
अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व
सूक्ष्मत्व, वेरी गुड।
और अव्यबाधत्व।
अव्यबाधित्व, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो ये आत्मा की आठ गुण हैं, चार गुण अनुजीवी गुण हैं, चार प्रतिजीवी गुण हैं। अनुजीवी गुण मतलब जो स्वभाव का अनुसरण करते हैं, कब? हर काल में। प्रतिजीवी जो स्वभाव के अभाव रूप गुण हैं, जो कि तभी प्रकट होते हैं जब स्वभाव की पूर्णता प्रकट होती है। ओके राइट। तो अरहंत भगवान ने चार घातिया कर्मों का भाव किया तो उनको अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, ये चार कर्म हुए, उनके चार गुणों की उपलब्धि हुई। और वहीं पर जब चार अघात्या कर्मों का भी अभाव हुआ तो क्या प्रकट हुए? चार चीजें। अब उनके पास आयु नहीं है राइट, तो उनके पास कौन सा गुण प्रकट हुआ है? आयु कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ?
अवगाहनत्व,
हाँ,
अवगाहनत्व,
अवगाहनत्व राइट। पहले चार गतियों की, चार गति रूप आयु को भोगकर उनमें अवगाहना लेनी थी। अब जब मेरे पास शरीर नहीं बचेगा तो मैं अपनी अवगाहना अपने में लूंगा। दूसरा अव्यबाधित्व, ये किस किस कर्म के अभाव के कारण प्रकट हुआ है?
वेदनिया।
वेदनी।
वेदनीय। क्या पहले हमें अलग अलग कर्मों के उदयों में बेधा जाता था? अब मुझे कोई बाधा नहीं कर सकता, अब मैं अव्यबाधित्व हूँ। सो अब जब शरीर ही नहीं है तो मेरे को कोई बाधा ही नहीं है, तो अव्यबाधित्व प्रकट हुआ। अवगाहनत्व हो गया, अव्यबाधित्व हो गया। सूक्ष्मत्व गुण किस कर्म के अभाव में प्रकट हुआ?
ना, वेट, सॉरी, कुड यू रिपीट दैट?
जो सूक्ष्मत्व नाम का गुण है वो आपको प्रकट हुआ, वो किस कर्म के अभाव में प्रकट हुआ?
नाम
नाम
नाम कर्म के। क्यों? शरीर स्थूल था, अब शरीर बचा नहीं, सूक्ष्म आत्मा बची, सूक्ष्म तत्व। आखिरी कौन सा वाला बचा? अगुरु लभुत्व, और कौन सा वाला कर्ण बचा?
गोत्र।
हाँ,
गोत्र।
गोत्र, गोत्र के दो भेद होते थे, उच्च गोत्र एंड नीच गोत्र। तो उसके कारण जगत में कोई बड़ा माना जाता था, कोई छोटा माना जाता था। लेकिन अब इस सारे व्यवहार का जो कारण था शरीर, वो ही नष्ट हो गया। तो अब गुरु कौन और लघु कौन, बड़ा कौन छोटा कौन, तो अगुरु लघुत्व नाम का गुण प्रकट हुआ। ऐसे आठ गुणों सहित, आठ कर्म रहित सिद्ध भगवान है, वे निकल परमात्मा है। वे क्या करते हैं? वे अनंत सुख को भोगते हैं। अब इस तीसरी ढाल का छठवां छंद है, उसकी शुरू की दो लाइनें हो गई हैं, हम आखिरी की दो लाइनों को आज पढ़ने वाले हैं। बहिरात्मता हे जानी तजी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याये निरंतर, जो नित आनंद पूजे। ठीक है, देखिए, हम जब भी कुछ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो हम अपने लिए कर पाते हैं, क्योंकि एक द्रव्य का सारा परिणमन उस द्रव्य के लिए ही होता है, अन्य द्रव्य के लिए उसका कुछ भी परिणमन नहीं होता। ये ठीक है? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम? हम जो कुछ भी करते, एक स्टोरी आती है, क्या हुआ, मतलब ऐसी स्टोरी, बहुत नॉर्मल सी स्टोरी है। तो क्या हुआ, एक बच्चा था, उसकी मम्मी से लड़ाई हो गई। तो उस मम्मी से वो बोलता है कि मुझे आप पसंद नहीं हो, आई हेट यू। ठीक है, और अब मम्मी उसको मारने के लिए दौड़ती है, ऐसे कैसे बोल रहा है बच्चा इतनी बदतमीजी से। ठीक है, तो मम्मी, वो मम्मी के डर से भागता जाता है और बोलता जाता है कि मुझे आप पसंद नहीं हो, मुझे आप पसंद नहीं हो। अब वो लोग रहते थे पहाड़ों पर, राइट, तो वो भागते जाता है दूर 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 मम्मी से। तो थोड़ी दूर जब वो ऊंचाई पर पहुंचता है और वो बोलता है कि मुझे आप पसंद नहीं हो, आई हेट यू, तो वहां से उसको वापस इको मिलता है कि आई हेट यू, मुझे आप पसंद नहीं हो। तो वो घबरा जाता है, ये कौन बोल रहा है मुझसे, और अब डरेगा तो वापस कहाँ आएगा, मम्मी के पास आएगा। तो दौड़ के जल्दी से मम्मी के पास आ जाता है और मम्मी से बोलता है, मम्मी वहां पर कोई है, और वो कहता है कि मैं उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मम्मी हंसकर बोलती है, ठीक है, अब तुम वहां पर जाकर बोलो मुझे आप पसंद हो, आई लाइक यू। तो फिर वो वापस वहां पर डरता डरता जाता है और चिल्लाता है कि आई लाइक यू। तो वहां से इको क्या आती है, आई लाइक यू। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, इनसे एग्जाम्पल से ये बताया जाता है कि वॉट एवर वी डू इन दिस वर्ल्ड, जो हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाते। आप किसी से मीठे वचन बोलते हो, ये आप अपने लिए बोलते हो, आप उसका उपकार नहीं कर रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आप किसी से गंदे वचन बोलते हो, आप आपके लिए कर रहे हो, आप किसी दूसरे का अपकार नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम कर बैठते हैं जिससे हमारा बहुत अहित हो जाता है और हम रियलाइज नहीं करते। इसको यहाँ पर पंडित दौलत राम जी हमको सिखाना चाह रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि तीन प्रकार के आत्माओं को आपने जान लिया है, बहिरात्मा होता है, अंतरात्मा होता है, परमात्मा होता है। तो इसको जानने का सारा सेंस क्या है, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि आप बहिरात्मा को जान के बहिरात्म पने को त्यागो। बहिरात्मता हे ये जानी तजी, बहिरात्म पने को पहले तो जानो। फर्स्ट यू नो कि आत्मा अलग है, जीव अलग है, और इन दोनों को एक मानना ये गड़बड़ है। यहाँ पर बहिरात्म पना आता है। तो पहले तो इसको जानो। कैसा जानो? हे जानो। और फिर क्या करो? तजी, इसको छोड़ दो, तज दो। बहिरात्मा को हे जानकर तज दो, छोड़ दो, परित्याग कर दो। और क्या करो? अंतर आत्म हुजे, जो आपका अंतरात्मा है उस रूप हो जाओ। कैसे हो पाएंगे हम अंतरात्मा रूप? परमात्म को ध्याये निरंतर, आप अपने जो परमात्मा है अनंत और सिद्ध भगवान, और जो हमारा अनादि निधन परमात्मा आत्मा है, इस सब का ध्यान करकर अंतरात्म रूप होना चाहिए। यदि किसे होना चाहिए, जो नित आनंद पूजे, ऐसे करने से जिसके द्वारा नित्य आनंद की प्राप्ति होती है, निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। तीन बातें, बहिरात्मा को आपने जाना, अंतरात्मपने को आपने जाना, परमात्मपने को आपने जाना। अभी परमात्मा तो हमारे पास वर्तमान में यहाँ पर है नहीं, ना अरहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा तो होते ही नहीं, बराबर ऐसा है, अरहंत परमात्मा हमारे पास नहीं है अभी। तो हमारे पास कौन बचे, दो लोग बचे, कौन, बहिरात्मा और अंतरात्मा। ठीक है, अब हम बहिरात्मा है इसका टेस्ट क्या है, तो इसका परीक्षा मुख जी ग्रंथ है अपना, माणिक्य नंदी आचार्य देव ने लिखा है परीक्षा मुख, आपने नाम सुना है?
हाँ, नाम सुना है,
परीक्षा मुख। तो उसमें टेस्ट दिया, एक बहुत सुंदर टेस्ट दिया कि आपको जानते हो कि नहीं जानते हो। उसमें सिंपल बोला, लेट्स डू दिस एक्टिविटी, ओके। वहां पर विषय ये चल रहा था कि आपको किसी पदार्थ के ज्ञान के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है। वहां पर क्या बोला कि लेट्स डू दिस एक्टिविटी राइट नाउ, ठीक है, आई विल स्पीक वन वर्ड एंड यू टेल मी व्हाट डू यू सी व्हेन आई स्पीक दैट वर्ड। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ आप उससे बताना आपको क्या दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। मैं एक एक करके किसी भी पूछूंगा, ठीक है। समीर रिजुल आप लोग हो? समीर रिजुल आर यू देयर? I don't think they're here. Manas, you're there, right?
Yes.
Okay. So I'll give one word and you have to tell me what do you see when I say that word. Okay? I'll start. Sweet. Manas, what do you see when I say sweet?
Soothing.
Oh, no. Like when I say sweet, what picture does come to your mind? Like when I say sweet, yeah.
Like an item?
Yeah.
Sugar?
Sugar. When I say sugar, what do you see?
White.
Yeah, white. And there's a cube, sugar cube, right? Okay.
Sorry, I didn't understand that.
Sour, if I say sour, let's change the taste. Not about taste. Now, if I say black, what do you see?
Sour.
What do you see?
Well, I'm confused what I'm saying now.
No, I'm saying I said black. So what picture comes to your mind suddenly when I say black?
Night
matlab darkness, right? You see something dark, black,
yes.
Color you see, right? I say black, you suddenly see the black color, right?
Yes.
Someone else would say, like, if I say boat, what do you see suddenly?
What do you say?
Boat,
the picture of the boat. You can visualize
the picture of the boat comes to your mind, right? Yeah. If I say Titanic,
the sinking ship.
Yeah. Okay. I say Gurudev Shri.
Gurudev Shri's picture comes in front of your eyes.
Okay. Now I say Atma. What do you see, Manas?
White.
Okay, white. Is it white means blank, nothing, or it's white?
Ketej, ekdam prakashit, white.
Okay. Manas, what do you see? What picture comes to your mind when you say Atma?
Myself.
No, picture, like you see your face? When I said sugar, you could see sugar. When I said boat, you could see boat. When I said sky, you would see sky. You do not have to look up to see sky or, you know, open the jar to see the sugar. It just comes to your mind. That picture comes to you suddenly. That the moment we say that word, it clicks. Correct? So I want to know, when I say gyayak, what comes to your mind? Manas. Anyone else? एक तो पता पड़ा कि प्रकाश दिखता है एकदम व्हाइट. Any other opinions?
नायक परमात्मा और जैसे दिए की लो जो होती है ज्योत.
हाँ. Okay.
I visualized you know like Arihant Paramatma's like you know the murti Bhagwan ki murti.
Bhagwan ki murti, right? So this is what Acharya Manikya Nandin Parikshamukh said, that आपको जब किसी चीज किसी वस्तु का परिचय होता है उस वस्तु के नाम लेते ही आपको वस्तु सामने दिखने लगती है. सामने से नहीं, आपकी ज्ञान में बन जाती है. बट लेकिन जैसे हम आत्मा बोलते हैं और यदि हमें आत्मा में आत्मा नहीं दिखता, हमें हमारा आत्मा नहीं समझ में आता क्या चल रहा है, इसका मतलब है हमने आत्मा से कभी परिचय किया नहीं. Like there is no visual. हम अरिहंत भगवान की मूर्ति को याद कर लेंगे या फिर किसी ग्रंथ में कोई पिक्चर बनी होगी फ्रंट कवर पे, तो हमें वो वाला आत्मा का शेप दिख जाएगा, सिद्ध भगवान का शेप दिख जाएगा. बट वील नॉट सी लाइक वी सी शुगर, लाइक तुरंत इट क्लिक्स. शुगर आई सेड एंड इट कम्स, शुगर कम्स. बट मैं ग्यायक बोलता हूँ, ब्लैंक, आई डोंट नो व्हाट ग्यायक इज, राइट? सो दैट्स अ साइन ऑफ बहिरात्मा. क्या आपका आत्म शब्द से तो परिचय है, आत्मा वस्तु से परिचय नहीं है. आपसे कोई पूछेगा आत्मा कौन होता है, आप बोलोगे जो जानता है देखता है. रेयरली वुड यू से मैं आत्मा हूं. मैंने पूछा आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा मुझे कहते हैं. नो, जो जानता है देखता है उसे आत्मा कहते हैं. बिकॉज वी हैव नॉट विजुअलाइज दैट पदार्थ, हमने उस वस्तु को नहीं जाना है. कैसे नहीं जाना है, अनुभूति पूर्वक नहीं जाना है. जैसे हमने रसगुल्ले को अनुभूति पूर्वक जाना है, तो जैसे गुलाब जामुन बोला, इवन टेस्ट तक आप जान लेते हो उसका तुरंत. करेक्ट. लेकिन आत्मा को बोलते ही साथ हम एकदम रूखे सूखे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं. एंड दैट इज द क्लोजेस्ट थिंग, दैट्स व्हाट वी आर, वो हम हैं. तो बहिरात्मा इतना बाहर है अपने स्वरूप से कि उसको अपने स्वरूप का नाम लेने पर भी खबर नहीं पड़ती. आप यदि मुझसे कोई पुराना लाइक इफ यू विल से राम, आई विल हैव सम विजुअलाइजेशन ऑफ राम बिकॉज आई हैव हर्ड हिज स्टोरी. सीता बोलोगे, द्रौपदी बोलोगे, तो सीता में मुझे शायद वो अग्नि, उनकी परीक्षा का कोई चित्र मुझे दिखने लगे शायद, राइट? रावण बोलोगे, कोई लाइक गंदा सा दिखने वाला मुझे कोई आदमी दिखने लगे शायद, राइट? बिकॉज आई हैव विजुअलाइजेशंस ऑफ दीज. बट व्हेन आई से आत्मा, आई एम टोटली ब्लैंक. करेक्ट?
यस.
दो तीन सिद्धियां करी वहां पर उन्होंने. तो पहले से इससे तो बहिरात्मपना सिद्ध हुआ कि हमने आत्मा शब्द से परिचय किया है, आत्मा वस्तु से परिचय नहीं किया. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, योर फर्स्ट होमवर्क इज टू यू नो दैट यू आर अ बहिरात्मा. बहिरात्मा को जानो एंड ये जानो कि बहिरात्मपना छोड़ने जैसा है, ये निंदनीय है. हम जो हैं हम वो भी नहीं जान पाए, दैट इज बैड. लाइक किसी की डायमंड की शॉप हो, किसी के पापा की, ओके, और लाइक ज्वेलरी की शॉप हो, एंड वो बच्चा सोना किसे कहते हैं, व्हाट इज गोल्ड, इफ दैट किड डजंट नो, देन इट डजंट लुक नाइस. लाइक उसके पापा का कोई बिजनेस है, वो रोज उस शॉप पर जाता है बच्चा, एंड ही डजंट नो व्हाट दिस गोल्ड इज कॉल्ड, इट्स सैड, ही शुड नो इट, राइट? सिमिलरली हम वहां पर उदाहरण दिया, अब प्रमाण की व्याख्या चल रही थी, उसका पहले ही अधिकार है, ठीक है? तो प्रमाण किसे कहते हैं, जो स्व और अपूर्वार्थ, जो स्व को और पर्व को अपूर्व तरीके जानता है उसको प्रमाण कहते हैं, ठीक है? तो वहां पर क्वेश्चन किया कि मैं देखिए इस घड़े को तो जानता हूँ, घड़े की जगह हम कुछ भी आप ले लीजिए, आपके सामने जो लैपटॉप हो, टैबलेट हो, टेबल हो, वट एवर, सो यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग, सो आई नो दिस पेन, आई हैव पेन इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं पेन को जानता हूँ, तो इससे क्या प्रसिद्ध हुआ, पेन प्रसिद्ध हुआ, राइट, सो इट इज लाइक एश्योर्ड कि पेन की एग्जिस्टेंस तो पक्का हो गई कि यह पेन है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी है, डोर है, रूम है, कबर्ड है, ये सब है, जिस जिसको जाना है वहां वहां उस वस्तु की सत्ता क्या हो गई है, प्रमाणित हो गई है, पक्का पक्की हो गई है, ठीक है, राइट, मैंने बोला मैं घड़े को जानता हूं, इस शब्द से घड़े की सत्ता तो प्रमाणित हो गई, तो वहां पर सर क्या की वाली बात तो ठीक है, हाँ हेलो क्या बोल रहे हैं आप,
मैं जानता हूँ तो मेरी भी तो प्रस्थिति हो गई,
हाँ तो वहां पर क्वेश्चन ये उठा है कि ठीक है आप ये बोलते हो किसकी सत्ता तो प्रमाणिक होगी, लेकिन आत्मा तो ऐसा है जैसे आप है, आंख कैसी होती है, आंख सबको जान लेती है, सामने सब कुछ देख लेगी, लेकिन आंख अपनी आंख को नहीं देख पाती, आप अपनी आंख से अपनी आंख को देख सकते हो विदाउट यूजिंग मिरर, यू कैन नॉट सी, तो वहां पर बोला कि ज्ञान भी ऐसे ही है, ज्ञान सारे पर पदार्थों को जानता है, ज्ञान ज्ञान को नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता, तो आप जो प्रमाण का लक्षण बोलते हो कि स्व को जानने वाला और पर पदार्थों को जानने वाला ये प्रमाण है, तो इट डजंट फिट वेल, क्योंकि ज्ञान तो अपने आप को नहीं जानता, तो वहां पर आचार्य माणिक्य नंदी ने उसका समाधान किया कि भैया आप जब ये बोलते हो कि मैं घट को जानता हूं, मतलब मैं घड़े को जानता हूं, तब आप अकेली घड़े को नहीं जानते, आप चार चीजों को जानते हो, एंड आप जब इन चार में से तीन चीजों को जान लेते हो तब आप घड़े को जान सकते हो, तो घड़ा इज अ लास्ट एंड रिजल्ट, तो चार चीजें कौन सी है, तो उन्होंने बोला कि आप वाक्य बोलो आपने क्या किया, मैंने ज्ञान से घड़े को जाना, ठीक है, तो मैंने किसने, मैंने तो उसमें कर्ता की सिद्धि हुई, तो मतलब मैं को होना पड़ेगा तब तो वो जानेगा ना, हेलो राइट, तो जो प्रमाण का ज्ञाता होता है वो किसी भी वस्तु को जानने से पहले सबसे पहले आत्मा को जानता है, मैं मेरी सत्ता है मेरी हयाती है, तो जानने वाली वस्तु कौन है, मैं हूँ, मैंने फर्स्ट, सेकंड साधन किससे, ज्ञान से, तो ज्ञान की सिद्धि हुई थी, सिद्ध हुआ कि मैं जानने वाली वस्तु हूँ, मैं ज्ञान वाली वस्तु हूँ, पहले मैं हूँ वस्तु, मेरे पास ज्ञान है, तीसरा ज्ञान है तो मैं जानता हूँ, तो एक क्रिया, मेरी क्रिया क्या है, तो मेरा द्रव्य मैं हूँ, मेरे पास मेरा गुण ज्ञान और मेरी क्रिया जानना, और अब इस क्रिया के चलते घड़े को कर्म को जाना, घड़ा कर्म, मैंने जिसको जाना सब्जेक्ट ये राइट, तो हम जब भी एक पर पदार्थ को जानते हैं तो हम एक तो बाहर की चीज जानते हैं, तीन अंदर की चीजों को जानते हैं, बाहर का तो गे को जाना, अंदर के आत्म द्रव्य को भी जाना, उसके ज्ञान गुण को भी जाना और उसकी जानन जानन पर्याय को भी जाना, एंड इसको शब्द की अपेक्षा नहीं पड़ती, आपको बोलना सिर्फ इतनी पड़ेगा कि आपने घड़े को जाना है, लेकिन प्रमाण ज्ञानी ने जब घड़े को जाना है उसके ज्ञान में व्यवस्थित है कि उसने अपने आप को भी जाना है, अपने ज्ञान को भी जाना है और अपनी जानन क्रिया को भी जाना है, वहां पर उन्होंने लिखा कि आत्मा को जाने बिना आप अन्य पर पदार्थ को जान ही नहीं सकते, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए आपको सामने आपकी टीवी में टीवी देखनी है राइट, यू वॉन्ट टू वॉच कार्टून्स, कार्टून्स आर कमिंग ओके, सो स्क्रीन को देखे बिना आप कार्टून्स को देख ही नहीं सकते, सही है, यू हैव टू सी द स्क्रीन, क्योंकि वो कार्टून्स कहाँ पर आ रहे हैं, स्क्रीन पर आ रहे हैं, सिमिलरली सामने ये वाला टैबलेट तो रखी हुई है, ये फोन तो रखा हुआ है, ये तो सामने रखा हुआ है, बट ये मैं जान रहा हूँ ये किसी स्क्रीन में जान रहा हूँ ना, मैं इसको इसके पास जाके तो नहीं देखता हूँ, मैं इसको अपने ज्ञान में देखता हूँ, तो ज्ञान में देखता हूँ तो मैं बिना ज्ञान को देखे इसको कैसे देख सकता हूँ? तो ये आत्मा स्वयं को जानकर ही पर द्रव्यों को जानता है। हाँ, जब तक ये स्वयं की सत्ता को नहीं मानता तब तक बहिरात्मा है, लेकिन बहिरात्मा को भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा नित्य अनुभव में आता है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव नहीं बदलता। सी पुद्गल को तो ये भी नहीं पता कि उसके पास स्पर्श रस गंध वर्ण है, फिर भी नहीं जानता इसके कारण उसके स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं परिणमते, ऐसा तो नहीं है। तो जीव भी यदि नहीं जाने कि मेरी सत्ता है कि नहीं है, मैं जानने वाला हूँ कि मैं करने वाला हूँ, कोई बात नहीं जानने से स्वभाव तो बदलता नहीं है, तो स्वभाव तो रहेगा तो रहेगा। हाँ, ये जीव की अच्छी बात होगी, उसकी भलाई इसमें होगी कि वो जितनी जल्दी पहचान ले उतनी जल्दी वो अपने स्वरूप की संभाल कर पाएगा। करेक्ट, ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दिस? तो बहिरात्मपना है, बहिरात्मपना यानी कि अपने नित्य प्रकट होते हुए आत्म को, नित्य नित्य उदित होती हुई आत्मज्योति को, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को देखते हुए भी अनदेखा करना, निरंतर ज्ञान की उर्मियों का प्रकट होना हो और हम उस ज्ञान को ना देखकर गेह को ही आविर्भूत करें, ज्ञान को तिरोभूत कर दें, अलग कर दें, ज्ञान की इंसल्ट करें, उसको ज्ञान रूप नहीं देखें, गेह रूप देखें, ये बहिरात्मपना है। ये बहुत सूक्ष्म है, ये मोटा मोटा तो हम सभी छोड़ देते हैं, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, लेकिन अंदर में जो राग की कणिका विद्यमान है, हमको राग विद्यमान है, हम उस राग को आत्मा का स्वभाव मानते हैं, ये बहिरात्मपना है। इसको हे जानना, हे जानकर इसको क्या करना, अकेली हे जानना इतना नहीं, हे जानकर इसको छोड़ना, ठीक है, राइट? बहिरात्मपना ये कैसे पता पड़ेगा कि जब तक आत्मवस्तु का निर्णय नहीं है तब तक भाई आत्मपन है। आत्मा कहने पर आपको आत्मा नहीं दिखता, खत्म हो गई बात। तो ऐसा नहीं कि आत्मा कुछ दिखेगा, कोई सुंदर सी रंग बिरंगी वस्तु, आत्मा ने अनुभूति, जैसे कि आपको शक्कर की अनुभूति है क्योंकि आपने उसकी समीपता की है, आपको जहर की अनुभूति नहीं है, आप जहर को जानते हो, लेकिन किसी को जहर को कहते ही जहर का टेस्ट आता है कुछ? समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि आपको उसकी अनुभूति नहीं है, राइट? जिसको इंजेक्शन नहीं लगा हो उसको इंजेक्शन नहीं पता क्या होता है, कैसे लगता है, अनुभूति नहीं है। तो ऐसे ही वस्तु का जब हम समीपता करते हैं तो हमें उसकी अलग तरीके की अनुभूति होती है, और हम उसके मात्र शब्दों में चर्चा करते हैं तो वो कोरा है, वो तो हमने कई बार किया है, उसमें कोई दम नहीं है, करेक्ट? ठीक है, तो बहिरात्मपने का लक्षण ये है कि हम अपने स्वरूप से इतने अनजान हैं कि हमें कोई मतलब, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हूँ, मैं स्वयं ज्योति सुखधाम हूँ, राइट? इतना कह देने पर भी हम इतने आसानी से कह जाते हैं केवल ज्ञान स्वभाव हूँ, इतने बड़े बड़े विशेषण, मैं सिद्ध स्वभावी हूँ, हम इतनी सहजता में दे जाते हैं और हमें कुछ फील भी नहीं होता, महसूस भी नहीं होता। ये हमारे बहिरात्मपने का लक्षण है। आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा इतना सूखा नहीं है। आत्मा जब अपने स्वरूप का विचार करता है तो जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। या मतलब हमने जब एक बार डिस्कस किया था पांच लब्धियों का स्वरूप, पांच लब्धियां होती हैं सम्यक्त के पूर्व पांच लब्धियां जब होती हैं उसमें करण लब्धि तक आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, करण लब्धि के आखिरी में आत्मा अनुभूति में आएगा, करेक्ट?
हाँ।
पांच लब्धियों के नाम आपको पता है, पांच लब्धि कौन कौन सी? क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, वेशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, पांच लब्धियां। इनमें से चार लब्धियों तक अभव्य जीव भी पहुंच जाते हैं।
Could you repeat that again slowly?
Yeah, first is क्षयोक्षम लब्धि। क्षयोक्षम मतलब पंचेंद्रिय संगीपना, मतलब आपके पास तत्वों का हे गे उपादेय विचार शक्ति होनी चाहिए, इतरी अंशों में भी होती है, नारकियों पंच इंद्रिय संगीत अंश गाय बैल मंकी इन सबके पास ये है, क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम लब्धि नहीं है अभी, क्षयोक्षम लब्धि तब होगी जब वो तत्व विचार करने बैठेगा, ठीक है। तो क्षयोक्षम ऐसा मिलना कि आप तत्वों का ज्ञान कर पाओ, और वो करने के बाद जब आप उसके विचार में बैठते हो तो वो क्षयोक्षम लब्धि हो जाता है। सेकेंड वुड बी विशुद्धि, तो अकेली ज्ञान हो लेकिन विशुद्धि नहीं हो तो काम में नहीं आता, क्योंकि उसको संसार से भय वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य नहीं होता है तो वो तत्व विचार में क्यों बैठेगा, तो विशुद्धि चाहिए। थर्ड वुड बी देशना, क्षयोक्षम यानी कि इतने ज्ञान की ताकत हो के साथ तत्व को समझ पाए, और समझने के लिए बैठा हो इतनी उसकी मंद कषाय हुई हो, ऐसे में उसको पहले जो सुना या तो वो याद आ जाए या फिर वर्तमान में प्रगट में मुनिराज उपदेश दे दें, ये कहलाएगी देशना, देशना लब्धि। जो देशना में तत्व का स्वरूप सुना या पूर्व का विचार हो स्मृति में आया उसमें विशेष चिंतवन करना, ये प्रायोग्य लब्धि है। यहां तक अभव्य जीव भी पहुंच जाते हैं, आप समझना, यदि अभव्य जीव यहां तक पहुंच रहा है तो यहां तक वो सात तत्व का विचार करके ही पहुंच रहा है, सात तत्व के अविचार पूर्वक नहीं पहुंच रहा है। मतलब उसने जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष इसका गुरुओं से उपदेश सुना है और उसको वह इसका विचार कर रहा है, लेकिन इतना होने पर भी वो जीव, इतनी ऊंची चर्चा सुन लेने के बाद भी वो जीव सम्यक को धारण नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। कैसी विडंबना है ना, अनहोनी सी है, लाइक वो सब कुछ उसके पास आ गया हाथ में सही मार्ग, फिर भी सहज ही वो प्रायोगिक लब्धि के आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हेलो, करेक्ट। तो नाउ प्रायोग के लब्धि तक आत्म स्वरूप का विचार चलता है सात तत्वों के विकल्प पूर्वक और निर्णयात्मक ज्ञान पूर्वक जैसे भी चलता है। अब पांचवी लब्धि आती है करण लब्धि, इसमें त्रिकरण परिणाम होते हैं, करण यानी कि हमारे परिणाम, ठीक है, त्रिकरण होते हैं इसमें, जो अपने तीन गुण स्थान भी है बाघ के, ठीक है। कौन कौन से तीन करण है, किसी को नाम याद हो तो?
चौथे लब्धि का नाम फिर से कहेंगे आप?
प्रायोग्य लब्धि, प्रायोग्य विशेष विचार करना, जो देशना में सुना उसके बारे में विशेष विचार करना, ये प्रायोग्य, प्रायोग्य जो सुना उसका प्रयोग करना, तो प्रायोग्य। किसी को त्रिकरण परिणामों के भेद पता है नाम?
अनिवृत्तिकरण, अधकरण और अपूर्वकरण।
अपूर्वकरण,
अधकरण
और अनिवृत्तिकरण। तो सबसे पहला होता है अधकरण, देन अपूर्वकरण, देन अनिवृत्तिकरण। इसको बहुत इजीली हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक फ्लाइट होती है, फ्लाइट, ठीक है। देखो एक जीव की अपेक्षा तो सिंपल है, मुझे अभी तत्व विचार के परिणाम हुए तो मेरे परिणाम बहुत विशुद्ध होने लगे, तो सबसे पहले अधः प्रवृत्तिकरण है। तो जैसे कि हम लोग ने फ्लाइट पर बोर्ड किया हुआ है, तो अभी हम सब लोग एक ही लेवल पर बैठे हुए हैं, राइट। तो मैं सबसे आगे वाली सीट पे हूँ प्लेन की, और आप सबसे पीछे वाली सीट पे हो, बट अभी प्लेन स्टेशनरी है, ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, तो मैं जितनी हाइट पर हूँ जमीन से उतनी हाइट पर आप हो, करेक्ट। ऐसे ही जैसे आपके परिणाम होते हैं, यदि मैं भी करण लब्धि में हूँ, एक साथ बहुत सारे जीव चढ़ते हैं क्योंकि लब्धियों में, क्योंकि अभी प्रत्येक समय में कोई ना कोई जीव सम्यक दर्शन ले रहा है, कोई ना कोई छोड़ रहा है, तो यहाँ बहुत सारे जीव अभी करण अधःकरण में है, बहुत सारे जीव अपूर्वकरण में है, बहुत सारे अनिवृत्तिकरण में है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, आप लोग सेम लेवल पर हो, तो भिन्न समयवर्ती जीव जब अधः प्रवृत्तिकरण पे आते हैं उन सबके परिणाम सेम होते हैं, एक से होते हैं लेवल, बट नाउ द फ्लाइट स्टार्टेड टेकिंग ऑफ, तो अब जब वो स्टार्ट करेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी ना, राइट। सो इट विल हैव, इट विल गो ऑन सर्टेन एंगल, करेक्ट। तो जो आगे वाला है उसकी हाइट ग्राउंड से ज्यादा होगी, जो पीछे वाला है उसकी कंपैरेटिवली कम होगी, करेक्ट, करेक्ट। ऐसे ही इसमें होता है, अपूर्व करण में जो आगे आगे के समयवर्ती जीव है जिनने पहले स्टार्ट कर दिया अपूर्व करण में, उनके परिणाम पीछे वाले जीवों के परिणाम से भिन्न होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और उनके इंडिविजुअली परिणाम भी पिछले पिछले परिणाम से अगला अगला परिणाम अपूर्व होता है। विशुद्धि के स्थान है, आपका परिणाम विशुद्ध होते जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आत्मा अभी अनुभव में नहीं आया, आत्मा अभी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर ही जब करण लब्धि में जीव आता है तो इसकी गुण श्रेणी निर्जरा स्टार्ट हो जाती है, कर्म इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, कर्मों में खलबली मच जाती है, उनको समझ नहीं आता क्या करें। तो दर्शन मोहिनी कर्म तो पूरा का पूरा अपनी जगह छोड़ देता है, वो जगह बनाने लगता है। तो दर्शन मोहिनी कर्म में अंतःकरण रूप उपशम होता है, मतलब अब पता पड़ जाता है कि करण लब्धि में आ गया, तो अगले अंतर्मुहूर्त में मतलब अगले 30-40 सेकेंड्स में ये आत्मा सम्यक दर्शन ले लेगा। सम्यक दर्शन लेगा तो पहले सम्यक दर्शन हो जाता है, वो कौन सा सम्यक दर्शन होता है जो प्रथमोक्षम सम्यक कहलाता है, ये मैंने पढ़ाया था आपको। प्रथमोक्षम सम्यक तो कौन सा होता है, औपशमिक होता है, छायोक्षमिक होता है कि क्षयिक होता है?
औपशमिक
नाम में ही औपशम, प्रथमोक्षम औपशमिक अनादिकाल से जो जीव पहली बार अनादि मित्र पहली बार सम्यक को लेता है वो औपशमिक ही होता है, उसमें दर्शन मोह को उपशम करना पड़ता है। तो क्या होता है, दर्शन मोह का उपशम होता है वह अंतरकरण रूप उपशम होता है, मतलब जितने काल सम्यक दर्शन रहेगा उतनी दर्शन मोहिनी कर्म की जगह खाली रहेगी, उतने टाइम तक उदयावली में भी दर्शन मोहिनी कर्म के परमाणु निर्जरित नहीं होंगे। तो वो क्या करते हैं, उतनी जगह को खाली करते हैं, तो या तो वो लोग पहले आके खिर जाते हैं या आगे को शिफ्ट हो जाते हैं उतनी जगह के कर्म, राइट? ये मैंने आपको बताया था, आपको यदि याद हो तो। मानस रिमेम्बर समथिंग वी डिस्कस लॉन्ग बैक, यस और नो?
किसके बारे में?
प्रथमोपशम सम्यक्त्व, अंतरकरण रूप उपशम, सब कुछ याद है? नहीं है, लाइक रियली लॉन्ग टाइम हो गया है। कर्णन योग का विषय ऐसे ही है, हम जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये बताना चाह रहा था मैं कि देखिए कर्म तो क्या करेंगे, मतलब कर्म तो हमारा कुछ करने के लायक है ही नहीं, जैसे ये आत्मा स्वरूप की संभाल करता है कर्म कुछ नहीं बचते, कहीं के नहीं बचते, राइट? क्योंकि आप देखो अंतर्मुहूर्त यदि आप आत्मा में लीन होते हो तो अनादिकाल के संचित सारे कर्मों का भाव होकर सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। सही है ये, करेक्ट? तो डू यू सी द पेस, कैसा भयानक पेस है? मतलब हम एक स्टेट लें, इसलिए स्टेटिस्टिक पे भी ऐसी लेंगे हम कि एक चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है, उसने सम्यक दर्शन प्रकट किया। अब जब से उसने सम्यक दर्शन प्रकट किया उसके प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा होगी, उसने बढ़ते बढ़ते श्रेणिक राजा जैसे अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक सम्यक पढ़ लिया, मतलब इसका सम्यक दर्शन अब छूटेगा नहीं, पक्का, राइट? इसका सम्यक दर्शन अब छूटेगा नहीं, मतलब इसका पता है आपको क्या होगा, ये 33 सागर तक यदि अब सर्वार्थ सिद्धि में है या कि 84,000 साल तक वो नरक में है, कहीं पर भी है, जब तक इसके पास सम्यक्त्व है तब तक प्रति समय इसके अंदर गुण श्रेणी निर्जरा होगी। गुण श्रेणी निर्जरा मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यू नो मानस? हेलो, आप लोगों में से किसी ने पढ़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इट्स अ क्यूबिक सक्सेशन, क्या? दो, दो के बाद चार, चार के बाद 16, टू टू द पावर टू इज फोर, देन फोर का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 64, 64 का, ऐसे करते करते पहले समय में दो कर्म खिरे, अगले समय में चार कर्म खिले, अगले समय में 16 कर्म खिरे, अगले समय में 64 कर्म खिले, सॉरी नॉट 64, 216, 16 का स्क्वायर 216 होगा, करेक्ट? ऐसा कब तक चलेगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? प्रत्येक समय चलेगा जब तक वो उसका सम्यक्त्व नहीं छोड़ रहा है तब तक। हेलो
जी,
आपको थोड़ा इमेजिनेशन, आप लोग कुछ नहीं करिएगा, आप लोग ऐसा करिएगा अपने लैपटॉप पर 2 to the power स्टार्ट करिएगा, 2 लिखना, 4 लिखना, 16 लिखना और आप उसको ड्रैग कर देना नीचे तक. यू विल सी आफ्टर सम टाइम योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर वुड नॉट काउंट, इट वुड से एक्सपोनेंशियल में. वो ई लगा के बात करेगा फिर. उसके लिए बोलेगा आप सुपर कंप्यूटर ले आओ. एंड दैट विल हैपन व्हेन यू विल ट्राई 2 to the power 32. 2 raised to the power 32 आप करोगे तो योर लैपटॉप वुडंट टेल यू अ नंबर, इट विल टेल यू अ इक्वेशन एक्सपोनेंशियल. हमारे लैपटॉप 2 का जो सबसे छोटा डिजिट है हमारे नंबरों में, राइट, 1 की तो पावर कुछ लागू होती नहीं है, बट 2 का यदि आप ऐसे स्क्वायर करते जाओ तो कहां तक जा सकते हो, 32 तक. बहुत 32 तक चले गए तो बहुत चले गए, करेक्ट. तो यहां पर तो असंख्यात कर्म जा रहे हैं, फिर असंख्यात रेस टू दी पावर असंख्यात, एंड दैट टू इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और वो भी 33 सागर से कितने कर्मों को जाना है वो अलग बात है कि प्रति समय कर्म आ भी रहे हैं, लेकिन जा इतने सारे रहे हैं ना, तो भी ऐसा करते करते जब वो वापस मनुष्य बनेगा, वो तीर्थंकर बनेंगे पहले और फिर वो दीक्षा लेंगे और वो 12वें 13वें गुणस्थान में वीतरागी सर्वज्ञ होंगे और वो 14वें गुणस्थान में योग निरोध करेंगे और उसके बाद उनके जो आखिरी होगा 14वें गुणस्थान के बाद उस समय आखिरी समय में, मतलब जब उनको समुद्घात करनी पड़ेगी, आखिरी समय में भी उनके आत्मा में इतने कर्म बचेंगे, इतने कर्म बचेंगे कि उनकी संख्या भी अनंत है, अनंतानंत है, बहुत बड़ी संख्या है. वो किसको? 14वें गुणस्थान वर्ती को. आखिरी समय में जो वो कर्मों का अभाव करने वाला है, दैट्स अ ह्यूज नंबर. अनंतानंत कर्म वर्गणाएं तब भी है. वो गुण श्रेणी निर्जरा 4वें गुणस्थान से कर रहा है, 13वें गुणस्थान में उसने घातिया कर्मों की सत्ता का अभाव कर दिया, फिर भी उसके पास अभी सत्ता में इतने सारे कर्म है. आपको बात समझ में आई?
हाँ.
और ये वाले कर्मों का अभाव आत्मा कितनी देर में कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, टोटल टोटल. अभी तो हमने देखा श्रेणिक राजा का या फिर जो सर्वार्थ सिद्धि में गए हैं इन लोगों का, कि जो 33 सागर तक गुण श्रेणी निर्जरा करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ सम्यक निर्जरा करेंगे, फिर दीक्षा लेंगे, फिर निर्जरा करेंगे, फिर अरहंत बनेंगे तो नाश करेंगे, फिर 14वें गुणस्थान में योग निरोध करेंगे और आखिरी में अर जो आपने 5 शब्द बोले इतने में इन कर्मों का अभाव करेंगे. इन्होंने इतने सारे कर्मों को नाश करने में इतना सारा समय लगाया ना, 33 सागर, करेक्ट. यदि चाहें हम अभी तो हमें वो अंतर मुहूर्त में हो सकते हैं खत्म, इतने ही कर्म. द सेम नंबर ऑफ कर्म, द सेम क्वांटिटी. आत्मा कितने में खत्म कर सकता है? इतने में. जस्ट लाइक जितने में एक स्कूल में एक सब्जेक्ट का पीरियड होता है, जितनी देर में हमारी अच्छी क्लास लगी ना, इतनी में 2 बार मोक्ष हो जाता है किसी को. जितनी बार हम एक स्वाध्याय करते हैं आधा घंटा 35 मिनट्स, लाइक भरत चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ, भरत चक्रवर्ती की दीक्षा पालकी सजाई गई और उनको सारे राजा लोग जिनके उसके 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके सेवक थे, उन लोगों ने सबने पालकी पालकी उठाकर सब लोग दीक्षावन में आए और उनका वहां पर दीक्षावन पे पालकी से उतरना हुआ, पेड़ के नीचे बैठना हुआ और वे ओम नमः सिद्धिव्या करके बैठे और उन्होंने केश लॉन्च किया, कपड़े उतार कर केश लॉन्च किया और सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो मुनिराज बन गए, मुनिराज बन गए. और अब उनके साथ सारे मुनि जो जितने राजा थे, तो बहुत सारे राजाओं ने भी दीक्षा ली, राइट. हमारे स्वामी ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे, तो ऐसा पहले होता था. लोक विनय के कारण भी ली जाती थी, जैसे आदिनाथ भगवान के साथ इतने सारे राजाओं ने ले ली थी, भले उनको कुछ पता नहीं था, बिकॉज उनको इतना ट्रस्ट था कि ये जा रहे हैं मतलब हमको, वी आर हिज फॉलोअर, वी हैव टू डू इट, हमारे नेता कर रहे हैं मतलब हमको करना है, दैट वॉज देयर विनय, ठीक है, रिस्पेक्ट. सो नाउ इनके साथ बहुत सारे राजाओं ने भी दीक्षा ली. सो नाउ अब मुनिराज भरत तो मुनिराज बन गए, तो सबने तालियां बजा ली, सबने जय बोल ली, सबने उनकी पूजन कर ली, उन्होंने केश नोच करके वो बैठ गए. तो बाकी लोग बाकी के मुनिराजों के केश नोच को देख रहे थे, इतने में ही देवों के बाजे बजने लगे और स्वर्ग से देव आने लगे और तुरंत यहाँ पर कुबेर आकर जिन मुनिराज को अभी आप देख रहे थे 2 सेकंड पहले, जिन्होंने जस्ट कपड़े उतारे हैं, जिन्होंने जस्ट केश नौची किया है, आप अब भी यहाँ पर इनकी पूजन करके हटे हो, 5 मिनट भी नहीं हुए आपको एंड इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। लाइक आप उसको इमेजिनेशन करो ना, मतलब उस समय के लोग कितने भाग्यशाली होंगे, वो मुनिराज को देखने आए थे और उनको अरिहंत भी दिख गए उसी समय, राइट? तो ये वाली शक्ति, मतलब भरत चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतते रहे, इतनी कषायें करी उन्होंने लाइफ में, इतना कुछ किया एंड आप अचानक से जाते हो एंड दैट हैपेंस, एकदम आप केवल ज्ञान ले लेते हो। हाउ इज इट पॉसिबल कि आत्मा को जो जानता है, तो आत्मा में ऐसी शक्ति है कि वह जानने में आए और आत्मा में ऐसा है कि तुझे वहां रुचे, भैंसरी का वचनामृत है, यदि तुझे संसार में कहीं नहीं रुचता हो तो आत्मा में आ, वहां रुचे ऐसा है, वहां पर बोर नहीं होते, क्योंकि जो लोग आत्मा के रस में लगे उनकी धुन अलग ही थी, वो निराले ही जीव हुए, निहाल चंद जी सौगानी, बहन श्री, गुरुदेव श्री, श्रीमद राजचंद्र, पंडित टोडरमल जी, दौलत राम जी, एक एक विद्वान, भागचंद जी, जिनको इसकी रुचि लगी उनको बस लगी, बहन श्री का दूसरा वचन अमृत है, जिसको लगी है उसी को लगी है, जिसको लगन लगी है उसी को ही बस लगी हुई है, करेक्ट? तो आत्मा में इतनी शक्ति है कि वह स्वयं को जाने, और कर्म इतने निर्बल हैं कि आत्मा यदि स्वयं को जाने तो कर्मों की कोई हैसियत नहीं बचती। हम इतना होने पर भी आत्मा और शरीर की भिन्नता की, आत्मा और राग की भिन्नता की चर्चा सुनते रहने होने पर भी हम आत्मा के निर्णय के लिए नहीं बैठते, ये बहिरात्मापन को जानकर हम उसको नहीं छोड़ रहे, मतलब हमने बहिरात्मा अपने आप को माना नहीं है। तो दौलत राम जी ने बोला, बहिरात्मापने को पहले अच्छे से जानो फिर उसको छोड़ो, और छोड़कर क्या करो, अंतरात्मपने को धारण करो। अंतरात्मपने को धारण करना, लेकिन अंतरात्मपने के लिए नहीं, परमात्म को ध्याय निरंतर, एक समय भी अरहंत सिद्ध भगवान को मत भूलना, क्योंकि वो अरहंत सिद्ध नहीं है, वो आत्मा का मिरर है। मतलब आप जैसे मिरर के सामने अपने बॉडी को देखने जाते हो, ऐसे आत्मा को देखने किसके पास जाओ, कि अरहंत देव की प्रतिमा के सामने जाओ, करेक्ट? ठीक है, हाँ। तो इसलिए परमात्मा का निरंतर ध्यान, अंतरात्मा का अवधारण और बहिरात्मा का त्यजन, उसको छोड़ देना, ऐसा जो करता है वह निरंतर आनंद की संतति को प्राप्त होता है, निरंतर उसका आनंद होता है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं,
डूब गए सब आत्मा में।
नहीं, रात भी बहुत हो गई है, तो नींद में तो नहीं।
नहीं, नींद में नहीं, ये सब बात में मेरा अच्छा सब्जेक्ट है तो उसमें डूब गए।
इसकी एक बहुत अच्छी चर्चा अनुभव प्रकाश में आई है, अनुभव प्रकाश में। तो अनुभव प्रकाश ग्रंथ में जब उन्होंने आत्मा के अनुभव का वर्णन किया, राइट, ये अधिकार लिखा उन्होंने, उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने देवाधिकार लिखा, और देवाधिकार में उन्होंने अरहंत देव और सिद्ध देव की चर्चा करी। तो उसमें अरहंत देव की चर्चा में उन्होंने इतनी सुंदर बात लिखी, उन्होंने व्याख्या करी कि देखो, तीर्थंकर का जीव परम पवित्र है, वह 3 कल्याणक तो द्रव्यजिन कहलाता है, कौन? गर्भ कल्याणक में, जन्म कल्याणक में और तप कल्याणक में। तीर्थंकर का जीव द्रव्यजिन कब कहलाता है? गर्भ, जन्म और तप, 3 कल्याणक तक भाई क्या कहलाता है? द्रव्यजिन, क्योंकि अपने परमेष्ठी कितने हैं? 5, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। लेकिन जो बालक गर्भ में आया है वह ना तो अरहंत है, ना सिद्ध है, ना आचार्य, ना उपाध्याय, ना साधु है, फिर भी उसकी गर्भ कल्याणक की पूजन होती है। राइट, वो किसी पद में नहीं आता गर्भ कल्याणक। ऐसे जन्म लेना वो बालक कोई ना वितरागी है ना सर्वज्ञ है, ना उसके आंशिक वितरागता है। हाँ छायक समकिति है वो बात है, लेकिन असंयमी तो पूज्य नहीं है ना जनागम में। अरहंत मतलब साधु परमेष्टि से ही पूज्य पना स्टार्ट होता है, करेक्ट। तो फिर जन्म कल्याणक में भी उसकी पूजन करी, तब कल्याणक में उनकी पूजन करी, तो ठीक है उसको समझ में वो थोड़ा समझ में आ जाता है। लेकिन तब भी वे अरहंत और सिद्ध जैसे तो नहीं हुए हैं, अभी भी छद्मस्थ है बराबर इतना है। तो फिर भी वहां पूछा कि फिर आप इन भगवान की पूजन क्यों करते हो, तो उन्होंने बोला कि भैया ये द्रव्य जिन है, ये भावी नैगम नय से जिनेन्द्र भगवान है। इसको गुरुदेव श्री बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं उसमें, जब सौधर्म इंद्र बालक तीर्थंकर को पांडुशिला पर नवन करा के वापस आता है, उसने सांडव नृत्य कर लिया, सब पहले माता पिता को भगवान को छोड़ते हैं और फिर माता पिता के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे माता ये तुम्हारा पुत्र हमारा नाथ है। गुरुदेव श्री बहुत अच्छे से बताते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो जैसे बोलते हैं हे माता ये तीन लोक का तारिनहार है, ये आपका पुत्र होगा लेकिन ये हमारा भगवान है, आप इसको अच्छे से रखना, हम इसको यहाँ छोड़ के जाते हैं लेकिन आप इसको अच्छे से रखना। ऐसे बहुत भक्ति से माता पिता की वो भक्ति करता है, किसको, एक बालक को, बालक जो भी जन्मा है राइट, उस बालक की इतनी प्रभुता है। तो वहां पर ये वाला प्रसंग उठाया, वहां तो बात इतनी करनी थी उनको, ये जो अरहंत देव की पाषाण की प्रतिमा है, ये पाषाण की प्रतिमा साक्षात मोक्ष मार्ग इसमें त्रिकाल चलता है, ऊर्ध्व लोक में अरहंत नहीं होते, अधोलोक में अरहंत नहीं होते, लेकिन वहां पर मोक्ष मार्ग फिर भी चलता है। तो वहां पर ये किसका कमाल है, कि जिनेन्द्र देव की प्रतिमाओं का कमाल है। वहां एक एक स्वर्ग के विमान में, नीचे भवन वासी देवों के विमान में जिन मंदिर होते हैं, वहां पर जिनेन्द्र देव की स्थापना से प्रतिमाएं होती हैं, ये साक्षात मोक्ष मार्ग को तीन लोक तीन काल में चलाती हैं। अरहंत देव तो 24 तीर्थंकर तो चौथे काल में हो गए आज, लेकिन ये मोक्ष मार्ग चल रहा है हमारे भरत क्षेत्र में, ये किसका प्रताप है। ये अरहंत देव की प्रतिमा स्थापना का प्रताप है। तो उसमें ये बोला कि अरहंत देव की साक्षात वितरागी मूर्ति की तो क्या बात करें, जो बालक हैं, जिनकी बाल चेष्टाएं हैं, उनको देखकर भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तीर्थंकर के बालक एक एक कल्याणक में बराबर। तो ये बहुत प्रबल निमित्त है। और फिर बहुत सुंदर वहां पर प्रवचन सार की 80वीं गाथा की व्याख्या करी कि अरहंत और आत्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, जो अंतर मानता है वह ना तो अरहंत को जानता है ना आत्मा को जानता है। तो उसकी बहुत सुंदर चर्चा है स्वरूप स्वानुभव की, वो वाली चर्चा हम लोग बाद में कभी करेंगे। अभी यहाँ पर तीन बातें आज हमको पता पड़ी, पहले तो बहिरात्मपने को नक्की करना है, नक्की करके ये अच्छा नहीं है हे जानकर अंतरात्मपने को प्रकट करना है, और परमात्मा की निरंतर भक्ति ध्यान होना है। परमात्मा दो है, एक तो अरहंत और सिद्ध करके बहिरंग परमात्मा है,
Is he going to come back, Manas?
Maybe his power has gone, Manas. Just
a second. Yeah, I can try to bring him in.
Could be his power is gone.
Jai Jinendra.
Jai Jinendra.
Jai Jinendra. Anubhav got disconnected. अरे नहीं मैं वही बोल रहा था अभी आज अपना टाइम हो गया हम कंक्लूजन वाणी स्तुति करते हैं ठीक है आज की क्लास से किसी को कोई क्वेश्चन
नहीं
नहीं
ठीक ठीक है माइनस दिन वाणी स्तुति करेंगे हाँ जी
इट वाज वेरी गुड
और आवाज बहुत क्लियर थी
द कॉल नहीं जा रही है सो आई थिंक कोई पावर क्या होगा
ए मानस अनुभव जी इज हियर
मानस इज बैक मानस
ओ ही इज बैक
यस 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 तो ठीक है हम लोग इसका कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं ठीक है हाँ जी माइनस तीन माइनस तीन
जावानी के ज्ञान से सूझे लोग आलोक सोवानी मस्कन सदा देतु दोक नो बार नमो कर्मंता